नमस्कार मित्रों, छिंदवाड़ा वलेन सपदोस योगेश। हमारा आज का विषय है लोकतंत्र में बहिष्कार की क्या जरूरत। गठबंधन द्वारा बैन किए जाने के बाद सबसे पहला विरोध इन एंकरों की तरफ से आया है, जिन्होंने नाखून काटकर शहीद होने की घोषणा कर दी। खुद पर लगाए बैन को आपातकाल घोषित कर पत्रकारिता पर हमला तक कर दे दिया गया। जिन 14 एंकरों पर बैन लगाकर उससे ज्यादातर ने बैन वाले दिन भी अपने प्रोग्राम में विपक्ष द्वारा लगाए गए बैन को गलत बताना, लेकिन उससे भी किसी एक ने भी यह बताने की हिम्मत नहीं की कि बैन लगाए जाने के पीछे क्या कारण है। क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन द्वारा निरंतर जो ये 14 एंकरों को बैन लगाए गए थे, और अभी भी इन्होंने अपने कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा नहीं की थी। आज हमारे साथ विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के महासचिव नरेश निमजे सर जुड़े हुए हैं। सर, मोबाइल वाले पर स्वागत सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर, क्या देखते हैं कि अभी वर्तमान में जो गठबंधन द्वारा जो मीडिया के प्रोग्रामों पर प्रतिनिधि ना भेजना, इस निर्णय को सर किस तरीके से देख रहे सर आप?
सर, लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में जो मीडिया है, ये चौथा पाया होता है। इसका काफी महत्व है। जितना महत्व न्यायपालिका का है, उतना ही महत्व मीडिया का भी है। लेकिन बीते कुछ सालों से मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। ये आज नहीं, ये 9-10 सालों की बात नहीं है, ये 20-25 सालों से आप देख सकते हैं। कांग्रेस के काल में भी ऐसे हुआ। तो पत्रकारिता एक स्वतंत्र हिस्सा है, तो उसको स्वतंत्र रहना चाहिए। और वो एक जनता और सत्ता के बीच का एक ये है, जरिया है। जनता की आवाज, गरीब कुचला दबा हुआ जो वर्ग है, उसकी आवाज उठाने का काम ये मीडिया करता है। लेकिन कुछ सालों से मीडिया ने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर एक घृणा फैलाने का काम किया है। और आपस में वैमनस्य या झगड़े लगाने का काम ये मीडिया कर रही है, और वो भी सत्ता के दबाव में या सत्ता के हित में। तो ये गलत है। इसी कारण देखिए, आज के दौर में कौन प्रसिद्धि में नहीं रहना चाहिए। और जो पार्टी है उनका तो प्रसिद्धि में, उसको तो जरूरत है प्रसिद्धि में रहना, फिर भी वो एक बहुत बड़ा निर्णय ले चुकी है, तो उसके पीछे बहुत ठोस कारण होना चाहिए। वो कारण को हमें समझना चाहिए। क्योंकि देखिए आप, अभी जो भी चैनल खोलो तो उसमें कोई जनता के मुद्दे नहीं दिखते। एक सब्जी वाला, एक मजदूर या किसान, इसके कोई मुद्दे नहीं दिखते। तो वो रहना चाहिए ना। हमको काम तो गरीब गरीब के लिए करना है, शोषित पीड़ित महिलाओं के लिए करना है। ये तो हो ही नहीं रहा। आज महिलाओं के ऊपर देखो कितने अत्याचार हो रही है। मणिपुर की आप हिंसा देख रहे हो, तो ये क्या है? मीडिया ने कुछ भी उसमें कवरेज नहीं किया, तो कैसे जनता तक ये बात जाएगी कि हमारी जो सरकार है चुनी हुई, वो हमारे हित में कौन सा काम कर रही है? तो जनता के हित में काम नहीं हो रहे हैं। विपक्ष जो है उसमें जनता भी आती है, तो ये जनता की आवाज है। और जनता चाहती है कि ये ऐसा मीडिया हमको नहीं होना, एक पारदर्शी मीडिया होना जो हमारे मुद्दे और हमारी आवाज उठाए। इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो 14 एंकरों पे करीब करीब बहिष्कार डाला हुआ है विपक्ष के काफी तमाम पार्टियों ने, तो उसके पीछे का ये कारण होना चाहिए।
सर, क्या देखते हैं जो इस तरीके का जो बहिष्कार किया है, तो क्या सर अब इस बहिष्कार के बाद क्या सर एक पर्टिकुलर विश्वसनीयता किसी कार्यक्रम में बनी रहे, या फिर क्या मीडिया की जो ये निश्चित एंकरों पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, क्या आने वाले दिनों में इसका कुछ फीडबैक जनता के हित में मिलने वाला है, क्या देखते सर?
नहीं देखिए, मैं सिर्फ बीजेपी यही खिलाफ नहीं बोलूंगा,
जी
बाकी जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं
जी
वो भी वैसा ही काम कर रही है करीब करीब।
जी
और हर किसी को सत्ता चाहिए, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है,
जी
और चोटी पे तो एक ही कुर्सी होती है, एक ही आदमी वहां बैठेगा,
जी
तो करीब करीब ये उसके लिए है सब। लेकिन जो विपक्ष ने अभी जो मतलब जो उन्होंने एक पहल की है तो
जी
वो स्वीकार्य है और वो जनता के हित में है, इस कारण यानी मीडिया मीडिया पे कुछ लगाम लगेगी और उनको एंकरों को वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, या वो चैनलों के मालिक ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जनता के मुद्दे रहेंगे तो चैनल रहेगा, नहीं तो कौन पूछ रहा है चैनलों को। हाँ फिर वहां पे तो वो मूवी तो दिखा नहीं सकते, कोई सीरियल तो दिखा नहीं सकते, कोई ड्रामा तो दिखा नहीं सकते, दिखाना तो उनको जनता की आवाज ही जो है वो दिखाना है। तो ये सब नहीं रहेगा तो ये चैनल बंद हो जाएगा, और विपक्ष अभी इसके भरोसे नहीं है, वो खुद अभी जनता के बीच में जा रहे हैं। ये देश बोलो तो ये पूरी 140 करोड़ जनता और उसकी आवाज जो है वो मीडिया उठाती है, लेकिन अभी लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमारी आवाज उठाई नहीं जा रही, हमारे जो मुद्दे हैं वो दब रहे, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसीलिए यही एक वजह है कि विपक्ष ने इसके ऊपर करीब करीब बयान लगाया है या बहिष्कार डाला हुआ है। तो अभी देखते आने वाले दिनों में क्या होगा, कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा ऐसा मुझे लगता है।
जी सर, एक और पूरा देश अमृत काल मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और उसी बीच में अभी हाल ही में G20 की मेजबानी की भारत ने, और उसमें सर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संयुक्त रूप से होती हैं, ऐसे भी मामलों में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ये चीज़ें नहीं होना, और इस पे इन चीजों पे कितना इफेक्ट डालती है, या आम जनता इस पर क्या सोचे सर?
सर ये अमृत काल क्या होता है, ये अमृत क्या होता है, ये किसने देखा अमृत, और कौन मानव जाति में कौन वो अमृत पी के अमर हुआ है, ऐसा तो एक भी इंसान है ही नहीं। तो जब अमृत ही नहीं है तो ये अमृत काल क्या है, ये अंधविश्वास फैलाने का काम है, लोगों को भ्रमित करने का काम है, तो ये काल का कोई महत्व नहीं है। अगर इनको ये अमृत काल समझते हैं और उनको उनको लगता है कि ये काल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम राज कर रहे हैं इसलिए काल अच्छा है, तो उन्होंने जनता के हित में काम करना चाहिए, उन्होंने समता लाना चाहिए, उन्होंने सबके साथ न्याय करना चाहिए, हर बच्चे को गरीब हो या रईस हो एक ही तरीके का उनको शिक्षा देना चाहिए, शिक्षा में समानता, आरोग्य विभाग में समानता, हर क्षेत्र में गरीब हो या अमीर की औलाद हो उनको समानता से लेना चाहिए, तभी अपना देश जो है एक उसमें समानता दिखेगी। नहीं तो भेदभाव तो आप देख रहे हैं कि 2-3% लोग चोटी पे बैठे और बाकी पूरा समाज करोड़ों लोग गरीबी के खाई में है, भुखमरी अपना हमारे देश में सबसे ज्यादा है, अशिक्षा हमारे देश में सबसे ज्यादा है, फिर भी ये दावे करना कि हम काफी शक्तिशाली हो गए, हमारी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, ये अपने लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और ये देश के हित में नहीं है।
सर, आपने आपातकाल भी देखा होगा, और आपातकाल की क्या स्थिति है वो भी आपको ज्ञात होगी, लेकिन वर्तमान में जिन एंकरों पर बैन लगाया गया है उनके द्वारा आपातकाल घोषित कर पत्रकारिता पर हमला, यह बताया जा रहा है, यह कहाँ जा रहा है सर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, कि क्या लगता है सर आपको कि पत्रकारों पर आपातकाल घोषित जो कहा जा रहा है उसको क्या नजरिया है सर आपका इसको देखकर?
आपातकाल मैं देखा तो नहीं, वो समय जो इंदिरा गांधी का समय था, लेकिन सुना है, लेकिन उस आपातकाल में और इसमें काफी फर्क है। वो कुछ समय के लिए आपातकाल था, लेकिन ये आपातकाल बहुत ही लंबा है और इसमें ये दिख नहीं रहा है आपातकाल है करके, लेकिन है। इसमें गरीब और गरीब हो रहा है, शिक्षा का अभाव है, सरकारी स्कूलें बंद हो रहे हैं, शिक्षा का प्राइवेटीकरण हो गया है और उसमें बिजनेस हो गया है। आज देखिए आप, जो गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, वो भी मुख्य प्रवाह में आए, लेकिन इतनी फीस है प्राइवेट स्कूलों में कि वहाँ पे वो सब कुछ कर नहीं सकता, और इधर उधर से पैसे ला के कैसे भी जुगाड़ करके वो उन्होंने एडमिशन दे भी दिया तो वो ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाता, इसीलिए गरीब और गरीब बनते जा रहा है। तो उसके पीछे के कारण ये सत्ताधारी लोगों ने, सत्ता ने सोचना चाहिए और उस पर अंकुश लगाना चाहिए। तो ऐसे काफी भ्रष्टाचार सबसे बड़ी ये दीमक की तरह अपने देश को खा रहा है, और भ्रष्टाचार का प्रमाण इतना बढ़ गया है। देखिए कांग्रेस के समय में भी राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट था कि केंद्र से जो 1 रुपया निकलता है तो 85 पैसे जो है वो भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, 15 पैसे ही जनता तक पहुंच पाते हैं। तो वो स्थिति अभी भी बदली नहीं है, अभी 15 पैसे की जगह 25 पैसे पहुंच रहे होंगे, फिर भी 75 पैसे का अभी भी भ्रष्टाचार हो रहा है। हर काम में, हर डेवलपमेंट में भ्रष्टाचार है, और ये अभी दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है। अभी देखो ना, काफी काम जो हो रहे हैं, अभी बिहार में पुल गिरा, हिमाचल प्रदेश में पुल गिरा, उत्तराखंड में पुल गिर रहे हैं, सीमेंट की सड़कें बन रही है उसमें क्रैक आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो भ्रष्टाचार के क्रैक है, ये भ्रष्टाचार के वजह से गिर रहे हैं। आप सही क्वालिटी से काम नहीं करोगे, और देखिए उसके पीछे का कारण ये है कि ठेकेदार को हम उसकी पूरी तरह गलती नहीं रहती, इसमें जो कमीशन रहता है ये मंत्रियों का या अफसरों का, ये ब्यूरोक्रेट्स लोगों, नौकरशाह का, तो ये प्रमाण सबसे ज्यादा है। अगर इनको भ्रष्टाचार, उनको कमीशन का पैसा देंगे तो मटेरियल में गड़बड़ी करेगा वो जो मटेरियल, उसको प्योर मटेरियल से काम नहीं करेगा वो, ऐसे काम करेगा वो, इसीलिए ये सब हो रहा है। भ्रष्टाचार पे पहले अंकुश लगाना चाहिए, और ये गरीबी, अशिक्षा और ये तमाम बातें हैं, इसकी जड़ है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को जब तक, जो भी इस देश का पंतप्रधान रहेगा, मोदी जी ने तो बोला था कि हम भ्रष्टाचार बंद करेंगे, काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख लाख रुपए डालेंगे, तो ये सब जुमलेबाजी पंतप्रधान के पद पे जो बैठता है तो उसमें सोच समझ के बातें करना चाहिए। ये उल जुलूल बातें, बकवास बातें नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पद पे बैठे हो तो आपके प्रामाणिकता के तरफ लोगों का ध्यान रहता है। तो ये सब बातें हैं, तो इस पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक अपना देश आगे बढ़ नहीं सकता। ये तमाम बातें हैं, तो ये कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। और जो आपस आपस में जो धर्म धर्म में, जात जात में ये बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, ये ऐसा मैं कहूंगा।
जी, ये थे हमारे साथ नरेश निमजे सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर लोकतंत्र में बहिष्कार की क्या जरूरत है, इसी के साथ में 14 एंकरों पर लगाए गए बैन के विषय को लेकर नरेश सर ने मोबाइल वाणी के साथ जानकारी साझा की। नरेश सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
छिंदवाड़ा वाले योगेश, धन्यवाद।